लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तानाशाही, निरंकुश सत्ता और यहां तक कि संकट में पड़े लोकतंत्रों के तहत मानव के मूलभूत अधिकारों के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है स्वर्ग की रानी प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पापा फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। वैटिकन स्थित संत पेट्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 2 मई को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रातेली ए सोरेले, बोंजोर्नो।
अति प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
नेल वांजेलो दे क्वेस्टा क्विंटा डोमेनिका दी पास्कुआ इल सिग्नोरे सी प्रेसेंटा come la vera vite e parla di noi come i tralci che non possono vivere senza rimanere uniti a lui।
पास्का के इस पांचवें रविवार के सुसमाचार पाठ में प्रभु अपने आप को एक सच्ची दाखलता के रूप में प्रस्तुत करते हैं और हमें डालियां कहते हैं जो उनसे संयुक्त रहे बिना जीवित नहीं रह सकते, और कहते हैं, मैं एक दाखलता हूँ और तुम डालियां हूँ। कोई भी दाखलता डाली के बिना नहीं होती और उसी तरह कोई भी डाली दाखलता के बिना नहीं होती। सिर्फ डालियां अपने आप में आत्मनिर्भर नहीं हो सकती, बल्कि वे पूरी तरह दाखलता पर निर्भर करती हैं, जो उनके अस्तित्व का स्रोत है। संत पापा ने कहा,
यीशु इंसिस्टे सुल वर्बो रिमानेरे।
यीशु संयुक्त रहने की क्रिया पर जोर देते हैं। आज के सुसमाचार पाठ में वे इसे 7 बार दोहराते हैं। इस दुनिया को छोड़ने और पिता के पास जाने से पहले यीशु अपने शिष्यों को इस बात को अच्छी तरह बतलाना चाहते थे कि वे उनके साथ संयुक्त रह सकते हैं। वे कहते हैं, तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। ये रहना, उनके साथ चुपचाप रहना, प्रभु में सो जाना अथवा जीवन में सुस्त बने रहना नहीं है। संत पापा ने कहा कि ऐसा नहीं है। यीशु के साथ रहने का प्रस्ताव वे एक साक्रिय संयुक्ति के रूप में और आपसी आदान प्रदान के रूप में रखते हैं। क्यों? क्योंकि दाखलता के बिना डालियां कुछ नहीं कर सकती, जबकि दाखलता के लिए भी डालियों की जरूरत है, क्योंकि धड़ में फल नहीं लग सकता। यह एक आपसी आदान प्रदान पूर्ण आवश्यकता है। एक दूसरे के साथ लेन देन करना है ताकि फल लाया जा सके। हम यीशु में रहते हैं और यीशु हम में रहते हैं। संत पापा ने कहा, सबसे पहले हमें उनकी जरूरत है। प्रभु कहना चाहते हैं कि उनके आज्ञा पालन से पहले, धन्यताओं से पहले, करुणा के कार्यों को करने से पहले उनके साथ रहना जरूरी है, उनके साथ संयुक्त होना है। हम तब तक अच्छे क्रिस्ते नहीं बन सकते जब तक कि हम उनके साथ संयुक्त ना रहें, और वास्तव में उनके साथ संयुक्त रहकर ही हम सब कुछ कर सकते हैं। यीशु को भी दाखलता के लिए डालियों के समान हमारी आवश्यकता है। भले ही यह कहना दुस्साहस के समान लगे, इसलिए हम अपने आप से पूछें, किस अर्थ में यीशु को हमारी जरूरत है? संत पापा ने कहा कि उन्हें हमारे साक्ष्य की जरूरत है। डाली के समान हमें भी फल के रूप में अपने ख्रिस्त जीवन से साक्ष्य देना है। यीशु के पिता के पास चले जाने के बाद भी शिष्यों ने दुनिया में स्वर्ग राज्य के सुसमाचार की घोषणा की एवं उनके वचनों एवं कार्यों को जारी रखा। यही हमारा भी काम है, सुसमाचार की घोषणा वचनों एवं कार्यों से करना। हम यीशु के शिष्यों को उनके प्रेम का साक्ष्य देना है। हमें जो फल लाना है वह है प्रेम। ख्रिस्त के साथ संयुक्त रहकर हम पवित्र आत्मा के वरदानों को प्राप्त करते हैं। इस तरह हम पड़ोसियों, समाज एवं कलीसिया की भलाई कर सकते हैं। फल से पेड़ की पहचान होती है। एक सच्चा ख्रिस्तीय जीवन ख्रिस्त का साक्ष्य देता है। संत पापा ने कहा, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? यीशु कहते हैं, यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। यह भी साहस का काम है। हम जो मांगेंगे वह हमें दिया जाएगा। हमारे जीवन का फलदायक होना प्रार्थना पर निर्भर करता है। हम उनसे उनके समान सोचने, कार्य करने, दुनिया को देखने और दुनिया की चीजों को यीशु की नजर से देख पाने की कृपा मांगें। इस तरह अपने भाई बहनों को प्यार करते हुए एवं सबसे गरीब लोगों तथा सबसे अधिक पीड़ित लोगों पर ध्यान देते हुए, जैसा कि उन्होंने कहा है, उनके हृदय से प्यार करने के द्वारा हम दुनिया में अच्छाई के फल, उदारता के फल और शांति के फल ला सकते हैं। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम अपने आप को धन्य कुंवारी मरियम की मध्यस्थता को सौंप दें। वे यीशु के साथ पूर्ण रूप से संयुक्त थीं और बहुत अधिक फल लाईं। वे हमें भी ख्रिस्त के साथ उनके प्रेम, उनके वचन में संयुक्त रहने में मदद दें, ताकि हम दुनिया में पुनर्जीवित प्रभु का साक्ष्य दे सकें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
Regina Celi letare alleluia.
Quiaque meruisti portare alleluia.
Resurrexit sicut dixit alleluia.
Ora pro nobis eum alleluia.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
स्वर की रानी प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने वेनेजुएला में जोश ग्रेगोरियो हर्नांडिस, जिसने रोस की धन्य घोषणा की याद की। उन्होंने कहा, पिछले शुक्रवार को वेनेजुएला के काराकास में विश्वासी लोक धर्मी जोश ग्रेगोरियो हर्नांडिस, जिसने रोस की धन्य घोषणा की गई। वे एक चिकित्सक थे, विज्ञान एवं विश्वास के धनी। वे रोगियों में ख्रिस्त के चेहरे को पहचानना जानते थे और उन्होंने एक भले समारिताने की तरह सुसमाचारी प्रेम से प्रेरित होकर मदद दी। उनका उदाहरण हमें उन लोगों की सेवा करने में मदद दे जो शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से पीड़ित हैं। तब संत पापा ने ताली बजाकर उन्हें सम्मानित किया। विश्वासियों को मरियम का महीना माय एवं मैराथन प्रार्थना पहल की याद दिलाते हुए संत पापा ने सभी को म्यांमार में शांति एवं मेल मिलाप के लिए प्रार्थना करने का आह्वान किया। संत पापा ने कहा, हम मई महीने में प्रवेश कर चुके हैं, जिसमें लोकप्रिय धार्मिकता कई तरीकों से कुंवारी मरियम के प्रति भक्ति व्यक्त करती है। इस साल इसे खास मरियम तीर्थस्थलों में महामारी के अंत के लिए प्रार्थना करते हुए मैराथन प्रार्थना के द्वारा की जाएगी। पिछली शाम को संत पेत्रुस महागिरजा घर में इसका पहला पड़ाव सम्पन्न हुआ। इस संदर्भ में वर्मा की कलीसिया में एक पहल है जो मेरे हृदय के अत्यंत करीब है। यह रोजरी के एक प्रणाम मरियम को म्यांमार के लिए शांति हेतु प्रार्थना करने का निमंत्रण है। हम प्रत्येक हमारी माता की ओर लौटते हैं जब कभी हम जरूरत में अथवा कठिनाई में होते हैं। हम इस माह हमारी स्वर्ग की माता से अर्जी करते हैं कि वह म्यांमार के अधिकारियों के हृदय को प्रेरित करे, ताकि वे मुलाकात, मेल मिलाप एवं शांति के रास्ते पर चलने का साहस पा सकें। उसके बाद संत पापा ने ऑर्थोडॉक्स कलीसिया एवं पूर्वी कैथोलिक कलीसियाओं को पास्का की शुभकामनाएं दी, जो जूलियन कैलेंडर के अनुसार रविवार को पास्का पर्व मनाए। उन्होंने कहा, पुनर्जीवित प्रभु उन समुदायों में प्रकाश, शांति तथा सांत्वना से भर दे जो कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। सभी को पास्का की शुभकामनाएं। उसके बाद संत पापा ने इसराइल में हुई घटना के लिए दुख प्रकट करते हुए कहा, मैं इसराइल के लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करता हूं। जहां पिछले शुक्रवार को मैरोन पर्वत पर एक दुर्घटना हुई जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हो गए, मैं इस त्रासदी के शिकार एवं उनके परिवार वालों के लिए अपनी प्रार्थना का आश्वासन देता हूँ। संत पापा ने मातृ एसोसिएशन की भी याद की और प्रोत्साहन दिया कि वे उन बच्चों के प्रति अपने समर्पण को जारी रखें जो हिंसा एवं शोषण के शिकार हैं। तत्पश्चात उन्होंने रोम के विश्वासों तथा विभिन्न देशों के तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया। खासकर उन्होंने एकता के लिए राजनीतिक आंदोलन के सदस्यों का अभिवादन किया, जिसकी स्थापना कियारा लुबिक ने 25 वर्षों पहले की है। संत पापा ने अच्छी राजनीति की सेवा के इस भले कार्य के लिए शुभकामनाएं दी और अंत में संत पापा ने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
या tutti voi auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Tu hai dakhlata, main hu dali, pavitra pita, tu hai mali. Main hu dali, kalam kiya hua, tujh mein. नहीं कर सकता हूं मैं हूं डाली चुना हुआ तेरे प्यार में रहना
वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। उत्तरी इसराइल में शुक्रवार तड़के दसियों हजारों ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के धार्मिक उत्सव में भगदड़ मचने से कम 45 लोगों की मौत हो गई और लगभग 150 लोग घायल हो गए। संत पापा फ्रांसिस ने इस दुर्घटना के लिए अपना दुख व्यक्त किया। वाटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 2 मई को भक्त समुदाय के साथ स्वर्ग की रानी प्रार्थना का पाठ करने के उपरांत संत पापा ने विश्वासियों को संबोधित कर इसराइल में हुई दुर्घटना के लिए अपना दुख प्रकट करते हुए कहा, मैं इसराइल के लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करता हूं, जहां पिछले शुक्रवार को मेरोन पर्वत पर एक दुर्घटना हुई जिसमें 45 लोगों की मौत हो गई और अनेक लोग घायल हो गए। मैं इस त्रासदी के शिकार एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए अपनी प्रार्थना का आश्वासन देता हूं। यहूदी ऑर्थोडॉक्स बीमोर त्योहार पर भगदड़ के बाद राष्ट्र रविवार को राष्ट्रीय शोक दिवस रखा। इसराइल ने कोरोना वायरस महामारी से संबंधित लगभग सभी प्रतिबंध हटा दिए थे और यह पहली सामूहिक धार्मिक सभा थी जिसे कानूनी रूप से आयोजित किया जाना था। मेरोन पर्वत पर ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के धार्मिक उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में एक संकीर्ण सुरंग से पार होने के क्रम में भगदड़ मच गई। इस अफरा तफरी में अनेक लोग जमीन पर गिर गए और लोग अपनी जान बचाने के लिए दूसरों को कुचल दिए। बोमर त्योहार हजारों लोगों को आकर्षित करता है, उनमें से अधिकांश अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी हैं। दूसरी शताब्दी के संत और सिद्धि प्राप्त रबी शिमोन बार योचाई वहां दफन किए गए हैं। उन्हें सम्मानित करने के लिए हर साल बड़ी भीड़ पारंपरिक रूप से प्रकाश अलाव प्रार्थना और उत्सव में भाग लेने के रूप में नृत्य करती है। अधिकारियों का कहना है कि यह देश की सबसे घातक नागरिक आपदाओं में से एक है। सोमवार 3 मई विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। इस दिन संत पापा फ्रांसिस ने ट्वीट कर कहा, आइए हम जनहित को बनाने और मजबूत करने के लिए विशेष रूप से मीडिया के शक्तिशाली साधन का उपयोग करें जिन्हें हम कर सकते हैं। आइए हम शांति के लिए मीडिया और सिग्निस का इस्तेमाल करें। और 2 मई को संत पापा फ्रांसिस ने 4 ट्वीट किया। उन्होंने रविवार या धर्मविधि के लिए निर्धारित पाठ पर चिंतन करते हुए सभी विश्वासियों को यीशु मसीह दाखलता के साथ जुड़े रहने हेतु प्रेरित किया। संत पापा ने लिखा, आज के सुसमाचार में प्रभु हमसे कहना चाहते हैं कि उनके आदेशों का पालन करने से पहले, दया के कार्यों को करने से पहले, हमें प्रभु में बने रहना और उनसे संयुक्त रहना आवश्यक है। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, उनमें बने रहने के लिए हमें सक्रिय रूप से और पारस्परिक रूप से संबंध बनाए रखना है। बेल के बिना शाखाएं कुछ भी नहीं कर सकती। उन्हें फूलने और फलने के लिए बेल के रस की आवश्यकता होती है, लेकिन बेल को भी शाखाओं की जरूरत होती है, क्योंकि पेड़ के तने पर फल नहीं लगते हैं। तीसरे ट्वीट में संत पापा फ्रांसिस ने इटली के मातिर संगठन को शोषण के शिकार बच्चों की सेवा की प्रशंसा करते हुए उन्हें जारी रखने हेतु प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, मेरे विचार आज मातिर संगठन की ओर भी जाते हैं जो हिंसा और शोषण के शिकार बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए काम करते हैं। मैं उन्हें अपनी प्रतिबद्धता जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। चौथे ट्वीट में संत पापा ने म्यांमार के लोगों और राजनेताओं को माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रेरित किया। संदेश में उन्होंने लिखा, आइए हम स्वर्गीय माता से निवेदन करें कि वे म्यांमार के सभी नेताओं के दिलों में बातें करें, ताकि वे मुलाकात, सुलह और शांति के रास्ते पर चलने का साहस पा सकें। और संत पापा फ्रांसिस ने शनिवार को विश्वासियों के साथ संत पेत्रुस महागिरजा घर से रोजरी प्रार्थना का नेतृत्व करते हुए महामारी की समाप्ति के लिए प्रार्थना की मैराथन का उद्घाटन किया, जो पूरे मई महीने तक चलेगा। पहल की घोषणा करते हुए प्रेस विज्ञप्ति में नवीन सुसमाचार प्रचार हेतु गठित परम धर्म पीठीय परिषद बताती है कि संत पापा फ्रांसिस की हार्दिक इच्छा के जवाब में मई का महीना प्रार्थना के मैराथन के लिए समर्पित होगा। संत पापा ने महामारी के अंत के लिए पूरे विश्व के विश्वासियों को रोजरी प्रार्थना करने हेतु प्रेरित किया। शनिवार शाम वाटिकन महागिरजा घर में संत पापा फ्रांसिस के आगमन पर युवा लोगों के एक समूह ने जलती मोमबत्तियां लिए उनका स्वागत किया। महागिरजा घर के अंदर युवाओं ने संत पापा की अगुवाई ग्रेगोरियन चैपल तक किया, जहां मादोन्ना देल सोकोर्सो नित्य सहायिका माता मरियम की प्राचीन छवि है। प्रार्थना शुरू करने से पहले संत पापा ने कहा, माता मरियम को समर्पित इस महीने की शुरुआत में हम पूरी दुनिया में फैले मरियम तीर्थालयों के विश्वासियों और भली इच्छा रखने वाले सभी लोगों के साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं। हम हमारी माता मरियम के हाथों पूरी मानव जाति को समर्पित करते हैं, जो इस महामारी के दंश से पीड़ित है। उन्होंने कहा, आने वाले महीने के प्रत्येक दिन बहुत से लोग जो वायरस से प्रभावित हुए हैं और जो महामारी के परिणाम भुगत रहे हैं, उन्हें धन्य कुमारी मरियम करुणा की माता को समर्पित करेंगे। और 1 मई संत जोसेफ मजदूर दिवस पर संत पापा फ्रांसिस की मंजूरी के साथ वाटिकन ने संत जोसेफ की लिटनी में 7 नए आह्वान जोड़े। वाटिकन में दिव्य भक्ति परम धर्म पीठीय धर्म संघ ने शनिवार को संत जोसेफ के सम्मान में 7 नए आह्वान किए, जो इस प्रकार हैं: मुक्तिदाता के संरक्षक, मसीह के सेवक, मुक्ति के कार्यकर्ता, कठिनाइयों में सहायक, निर्वासन के संरक्षक, पीड़ितों के संरक्षक और गरीबों के संरक्षक। यह पहल संत जोसेफ वर्ष के दौरान आती है, जिसे संत पापा फ्रांसिस ने 8 दिसंबर 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक घोषित किया है। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।